छत्तीसगढ़ उस जगह में से है जहां पे तमाम प्रकार के रिसोर्सेस हैं, वहीं पे सारे खनिज संसाधन हैं, जहां पे आदिवासी, जहां आदिवासी है वहीं जंगल है, वहीं पहाड़ है, वहीं सारे रिसोर्सेस है, और आदिवासियों ने उसको बचा के रखा है। तो तमाम प्रकार की जो सरकार चुन के आती है, और लोकतंत्र तो एक बहाना है, चुने वही लोग जाते हैं जो कॉर्पोरेट जगत चाहती है। कॉर्पोरेट और सरकार के साथ जो मिली भगत के साथ जो लूट चल रही है, तो उसका एक बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ में है। मैंने 32 साल की पत्रकारिता में ये देखा। तमाम जो है जो मुख्य धारा की पत्रकारिता है उसमें जो है सारे कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा है, तो क्यों अपने खिलाफ समाचार चलाने देगी। तो कुल मिलाकर ये है कि मुख्य धारा की पत्रकारिता में बस्तर और तमाम आदिवासी इलाके, चाहे अंबिकापुर हो चाहे छत्तीसगढ़ के तमाम वो आदिवासी इलाके हों, उनकी खबरें बिल्कुल नहीं आती है, वहाँ के आंदोलन की खबरें नहीं आती है। हम राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय के पत्रकार को लेके मैं भी कई बार गया, मेरे साथ के कई लोग गए, उसके बाद इनको पुलिस उठा लेती है। मेरे जैसे आदमी पे कई बार धारे और कई बार मुकदमे कायम हुए। तो सबसे ज्यादा तो केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरा हमारे देश में पूरा मीडिया की स्थिति ऐसी है कि जो लोकल जो जर्नलिस्ट हैं वही प्रताड़ित होते हैं और वही मेहनत भी करते हैं। लोकल जर्नलिस्ट के लिए यहाँ मतलब केवल खतरा सरकार से ही नहीं, केवल खतरा माओवादी से नहीं, केवल खतरा जो तस्कर हैं, जो स्मगलर हैं और जो भ्रष्टाचारी हैं उनसे खतरा नहीं, सबसे बड़ा खतरा उनके साथ तो उन मीडिया संस्थानों से हैं जो उनको जोड़ के तो रखी है, मगर जो है वही पत्रकार जब आप जेल में चला जाता है उसी पत्रकार के साथ जब वारदात होती है, मारपीट होती है, तब आप का मीडिया संस्थान साफ साफ कह देता है कि इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। ऐसा मैं खुद भी भुक्त हो गई हूँ, पत्रिका में था तो मेरे साथ जब मारपीट हुआ था एक मंत्री के इशारे पे, वन मंत्री के इशारे पे, पत्रिका ने ही मेरे को सब्जेक्ट दिया था कि मैं उस वन मंत्री के खिलाफ खबर करूं।
पुल बनाने के
लगातार 3 या 4 बार मैंने उसको खबर चलाया, मगर जैसे ही जब विधानसभा सत्र आया और विधानसभा सत्र के आने के तुरंत बाद मेरे को संपादक की तरफ से दबाव पड़ा, मालिक की तरफ से दबाव पड़ा कि मैं खबर रोक दूं, तो मैंने वो खबर मीडिया में डाल, सोशल मीडिया में जारी कर दिया। तो फिर मंत्री के लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। अब ये उसके बाद जो है पत्रिका अखबार ने साफ साफ कांकेर पुलिस को लिख के दे दिया कि कमल शुक्ला से हमारा कोई वास्ता नहीं। अब दुनिया में दो ही पक्ष होते हैं, एक अन्याय का और एक न्याय का, एक सत्ता का और एक जनता का। तमाम प्रकार की जितनी सत्ता है मैं उन सब के खिलाफ खड़ा हूँ। हमारे देश में आज मीडिया का जो चल रहा है कि रोज जो डिबेट चल रहे हैं वो पूरी तरह से मतलब इस स्थिति के लिए आज जिम्मेदार हैं, तो ऐसी पत्रकारिता के खिलाफ हूँ। आप जो है किस तरह से आप लोगों को जोड़े रखिए, आप किस तरह से लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं के पक्ष में आप खड़े रह सकते हैं, ये है जनता का पक्ष और ये ही जनपक्षी। और आप इसके बिना आप आग लग रही है केवल उसको फोटो खींचेंगे तो ये पत्रकारिता मैं नहीं समझता।
In the national media, there's a huge gap between the ground reality in Kashmir and what is being depicted.
पूरी आशंका जताई थी कि जो कुछ काबुल में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, वो एक दिन कश्मीर में भी हो सकता है, और अब हमारी वो आशंका सच साबित हो रही है।
and that has created a certain kind of narrative to demonize Kashmiris.
आतंकवादी चाहते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों को छोड़कर किसी और धर्म का व्यक्ति वहां ना रहे.
To treat Kashmiris as secondary.
ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद की क्राइम फाइल आज तक नहीं खुल पाई?
It completely froze journalism. Journalists were operating without internet, without telephones. What has changed since 2019 is that we see media is less and less free. It is more controlled. There is an overwhelming sense of fear that most Kashmiris are undergoing, and that includes journalists. It's impossible to do a story today about human rights, to say anything critical about security forces, to look at a militancy-related incident beyond the official statement. It's just become impossible to do that. I went to court because the situation was unprecedented. This was violative of fundamental rights. It took another 5 months, but the court verdict was by and large quite good. They fell short of declaring internet as a fundamental right, but it laid down that the government cannot curtail internet for prolonged periods. Now, how it is being implemented is another matter. Plus, it leaves a little ambiguity about what the prolonged period means. Our office was located, like many other newspapers, in a government building. But we seem to have been singled out. And so one fine day they just came, they asked our staffers to move out and locked up the office. The building belonged to the government, but the infrastructure belonged to Kashmir Times. So we've been completely robbed of that. Our offices, which had more than 100 people, today we hardly have 2-3 people. Just managing to keep it alive. The local journalists are undergoing a huge crisis. There is the gun of the militants. There are sometimes mobs that go out of control and start some kind of a moral policing. And you have a state trying to completely control media, summoning journalists to police stations for any little uncomfortable story. Some of them are arrested, sometimes for prolonged periods. And this is something that we hardly hear about in the national narrative.